Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
भक्ति शक्ति संतावासल में माताओं स्नेह में बहनों आप सर्वबंधुओं, तो प्रसंग मंगलाचरण संबंधी चल रहा है जिसके अंतर्गत ऋषि संकेत करता है। लेकिन यहां ऋषि कौन है? तो जिन्होंने भाष्यकार के उस भाष्य की हिंदी टीका की है, ऐसे वह ऋषि मंगलाचरण करते हुए संकेत उन्होंने किया कि पूर्व में जो ऋषियों ने चर्चा की या जो सिद्धांत बतलाया और जिसको पद वाक्य प्रमाण से पुरस्कृत करते हुए और उन्होंने उसकी चर्चा की, ऐसे उन समस्त ऋषियों को मैं नमस्कार करता हूं। और वो चर्चा जो की है वो क्या है? तो जिसमें समस्त शास्त्रों का जो अंतिम सिद्धांत है, जिसे वेदांत शब्द से कहा जाता है, ऐसे उस वेदांत की ही उन्होंने व्याख्या की, ये चर्चा की। तो वेदांत को लेकर के ही हम लोग उसको जीवन में कैसे समझें, तो समस्त श्रुतियों में आप देखते हैं ओम को उठा करके उसकी मात्राओं को लेकर के जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाओं से उसका साम्य मिलाते हुए और इसी प्रकार से विश्व तेजस प्राज्ञ आदि से साम्य मिलाते हुए और वैसे ही विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर आदि से साम्य उन मात्राओं का मिलाते हुए जागृत स्वप्न और सुषुप्ति आदि अवस्थाओं से साम्य मिलाते हुए और उन्होंने उसमें प्रमाण देते हुए और उसकी व्याख्या और सिद्धांत को हमको बतलाया। हमारे पुराणों के अंतर्गत भी इस स्थिति को निर्वचित किया गया, अर्थात उसको बतलाया गया। संकेत थोड़ा हमने किया था कि भागवत के अंतर्गत यह जो उपनिषद कृत सिद्धांत है, उस सिद्धांत को ही समझाने के लिए उदाहरण रूप से, उपाख्यान रूप से और भागवत में चर्चा की गई और बड़े सरल ढंग से उसे समझाया गया। और क्या उपाख्यान दिया? तो समंतक मणि को लेकर के उन्होंने उसकी चर्चा की। अब उसके द्वारा क्या बतलाया? जागृत अवस्था क्या है, स्वप्न अवस्था क्या है, सुसुप्ति क्या है और उसमें जो मूल वस्तु है वो क्या है, ये चर्चा। तो आप देखते हो कि वहां पर चर्चा आती है, सबको कथा मालूम कि उसको जब भगवान श्री कृष्ण ने मांगा तो उसने दिया नहीं, लेकिन उसका फिर क्या रूप हुआ? तो कहने लगे उसी सत्राजित का भाई और उसको जो है गले में धारण करके और घोड़े पर सवार होकर के और भ्रमण के लिए निकल पड़ा। लेकिन आगे क्या हुआ? तो वहां आप सुनते हो बतलाया गया कि उसके उस भाई को किसी ने मार दिया और मणि को लेकर के चला गया। वो मणि उसके हाथ से भी निकल गई। फिर जो है आगे जाकर के देखते हैं तो वो उसे किसने मारा? घोड़े को भी मार दिया और उसे भी मार दिया। और आगे जो है फिर कहा कि उस मणि को लेके गया सिंह। कौन लेके गया? सिंह। और सिंह उस मणि को लेकर के गया, लेकिन जो है फिर आगे क्या बतलाते हैं कि सिंह को भी मार दिया और फिर उस मणि को जो है सिंह को मारने वाला वो ले गया। कहा वो कौन था? तो कहने लगे रीछ भालू, वो ले गया। अब वो उस मणि को कहां ले गया? तब क्या बतलाया वहां? कहा गुफा के अंदर ले गया और गुफा में ले गया और गुफा में जब गया तो वहां पर उसने उस मणि को रखा और उस मणि को रखा तो वहीं पर कौन था? तो तो कहने लगे बेटी उसकी है जामवती, और वह जामवती जो है उस मड़ी से खेलने लगी, उस मड़ी का आनंद लेने लगी, उसके प्रकाश में कार्य करने लगी। और रीछ जो था वहीं पर है क्या हुआ, कहा सो गया। अब जब ये स्थिति हुई तो सत्राजित ने जो है सोचा कि भगवान ने मड़ी मांगी थी और हमने नहीं दी, तो इसका मतलब है इन्होंने ही हमारे भाई को है करके और मड़ी को ले लिया, तो ये उनको कलंक लगा। और हम लोग भी क्या कहते, जब कोई घटना घटित हो जाती है भगवान ने अच्छा नहीं किया, ये कहते हो, तो दोष किस पर आता, कहा भगवान के ऊपर। हम लोग भी कहते ईश्वर की ऐसी ही मर्जी थी है, ईश्वर ने ही ऐसा किया। पहले तो जब है तब कहते हो हमने किया, और जहां पर हमारी असहायता हो जाती है, हम जहां पर असमर्थ हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, कहा ईश्वर। इसलिए तुलसीदास ने काल है कर्मे ईश्वरे, मिथ्या दोष, मिथ्या शब्द का प्रयोग किया। तो ऐसे ही सत्राजित ने भी किया। अब जब ये भगवान को कलंक लगा तो भगवान ने सोचा कि इस कलंक को धोना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो गीता भगवान क्या कहते, अपकीर्ति मरणाद अतिरिच्यते, है ना। इसलिए लोकापवाद से भी बचना चाहिए, क्योंकि अपनी जो अपकीर्ति है वो मृत्यु से भी भयंकर। तो भगवान ने उस कलंक को हटाने के लिए क्या किया, कहा अन्य लोगों को भी साथ में लिया और उस मड़ी की खोज की। और खोज की तो आजकल तो साधन है, पहले प्राचीन काल में उतने मार्ग भी अच्छे नहीं थे, ऐसे साधन भी नहीं थे, तो क्या करते थे, जब चोर को उसकी चोरी पकड़ने के लिए खोजते थे तो क्या करते थे, पद चिन्हों को देख करके खोजते थे, उसके पैरों के चिन्हों को देखते जाते थे और फिर खोज करते थे। भगवान भी चल पड़े, कहा घोड़े पर सवार होकर के गया है तो घोड़े के पद चिन्हों को देखते हुए पहुंचे। और पहुंचे तो जिस जंगल में वह गया था तो वहां उस घोड़े को उसने क्या देखा, भगवान ने क्या देखा, अचेत पड़ा, मन मरा हुआ पड़ा, और जो है वो भी मरा हुआ पड़ा, मड़ी वहां नहीं। अब देखा आगे तो आगे सिंह के पैर दिखलाई दिए, और सिंह के पैरों को देखते हुए उन पद चिन्हों को देखते हुए आगे बढ़े तो सिंह भी मरा हुआ मिला, और सिंह मरा हुआ मिला तो आगे पद चिन्ह किसके मिले, कहा भालू के मिले। और उसको खोजते हुए जब गए तो वो भालू कहां तक दिखाई दिया, कहा गुफा के दरवाजे तक, तो समझ गए कि इसी गुफा में हुआ। अब उस गुफा में प्रवेश करने की अन्य की सामर्थ्य, तो भगवान ने कहा तुम लोग यहीं खड़े रहो मैं जाता हूं, और भगवान उसमें प्रवेश कर गए। और प्रवेश कर गए फिर जो घटना हुई वो हुई, लेकिन इसको मूल जिस उद्देश्य से कहा गया, हमारी जागृत अवस्था क्या है, जहां पर हम इंद्रियों के द्वारा व्यवहार करते हैं, इंद्रियां हमारी चेतन हैं और इंद्रियां संसार के पदार्थों को शब्द स्पर्श रूप रस का ज्ञान कर रही हैं, उस अवस्था का नाम क्या है, का उसका नाम है जागृत। और इंद्रियों को श्रुति में उपनिषद में क्या कहा, इंद्रियान हयान आहु, इंद्री क्या है, का घोड़े, और घोड़ों पर सवार होकर के जाना ये है जागृत अवस्था। वहां तक तो जीव जो है क्रिया करने में अपनी तरफ से समर्थ, लेकिन आगे क्या हुआ, कहने लगे जहां पर घोड़े अचेत हो गए तो जीव भी असमर्थ हो गया और वो भी अचेत हो गया, लेकिन आगे फिर भी श्रृंखला चली, तो वो क्या चली, तो कहा सिंह की। और सिंह क्या है, सिंह जंगल का राजा है, सिंह क्या है, जंगल का राजा, और राजा है माने अकेला ही विचरण करता, अकेला ही सामर्थ्यवान है, तो सिंह विचरण करता। और स्वप्न अवस्था क्या है, ये सिंह कौन है, ये हमारा मन ही सिंह है,
जो इंद्रियों के घोड़ों के न होने पर भी, जागृत अवस्था न होने पर भी, वहां तो अचेतता है, इंद्रियां नहीं है, उनका अभाव है, लेकिन वहां पर जो है सिंह का उस मणि से, मणि के सहयोग से विचरण होता, और सिंह जो है उस जंगल में उस मणि से खेलता है, ये समझ लो। तो जैसे वहां सिंह, वैसे ही हमारा स्वप्न के अंदर उस आत्ममणि से क्या करता है, उस आत्ममणि को धारण करके, यहां तो इंद्रियां भी जो उसको लेकर के जो है व्यवहार वाली होती हैं, लेकिन स्वप्न के अंदर केवल मन ही व्यवहार कर पाता, सारा व्यवहार मन का, मन मनोराज्य होता है। तो वहां पर जो है आत्ममणि से काम करने वाला कौन है, मन, और मन ही क्या है का सिंह है। और फिर उस सिंह को भी अचेत कर दिया गया, उससे मणि छीन ली, मणि के अभाव में सिंह भी अब जो है चेत हो जाता, और जब छीन ली गई तो कौन ले गया का जामवंत, भालू, रीछ है। और रीछ जो है उस मणि को जब ले गया तो सिंह भी अचेत हो गया, स्वप्न का काम भी, जागृत भी गया स्वप्न भी गया, और क्या हुआ तो कहने लगे वो ले गया भालू, और भालू कहां ले गया, कहा गुफा में, है ना। इसी को वेद कहता है, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, ये वेदांत सिद्धांत है। क्या है, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, जो इस गुफा के अंदर निहित है, और कैसी गुफा है, परम व्योम रूप, एक तो सामान्य व्योम है आकाश जिसे भूताकाश कहते हैं, और एक चित्ताकाश भी कहलाता, और जो परम व्योम है वो है चिदाकाश, चिदाकाश, चित्ताकाश, भूताकाश। तो परम व्योम क्या है, तो परम व्योम है चिदाकाश, उस चिदाकाश और उस गुफा के अंतर्गत, तो अंतःकरण की ही गुफा। अब उस गुफा के अंतर्गत ले जाने वाला कौन है, का भालू। तो सिंह तो मन का प्रतीक हो गया, इंद्रियां घोड़ों का प्रतीक हो गई, ये भालू किसका प्रतीक है, ये है अज्ञान का प्रतीक, ये किसका प्रतीक है, अज्ञान का प्रतीक, काले रंग का भी है, तो अज्ञान का प्रतीक भालू। फिर अज्ञान जो है उस मणि को ले जाता, और अज्ञान ले जाता है तो कहां ले जाता, उस गुफा के अंदर, और उस गुफा में ले जाता है तो उसी का नाम है सुसुप्ति अवस्था, उसका नाम क्या है, सुसुप्ति अवस्था। और उस सुसुप्ति अवस्था में क्या क्या है, तो वहां पर आत्ममणि है, और आत्ममणि का जो सुख है उसको कौन ले रही है, जामवती, है ना, माने वृत्ति, जामवती कह दो या वृत्ति, आपके ही इस जीव की ही जो वृत्ति है, अंतःकरण की वृत्ति है, वह उसका सुख ले रही है, लेकिन सुख तो ले रही है, सुख कैसे ले रही, अज्ञान से पराधीन होकर के, माने उस रीच से पराधीन होकर के, रीच की कस्टडी में वह विद्यमान है, और गुफा से बाहर कहा उसे कोई पता नहीं, गुफा से बाहर कहा कुछ, लेकिन फिर भी वहां पर गुफा के अंतर्गत अज्ञान से जो है पराधीन होते हुए और उस आत्ममणि से खेल रही। इसलिए आप जब जागृत में आते तो क्या कहते हो, बड़े सुख से सोया और कुछ भी कुछ नहीं जाना, ये अज्ञान की पराधीनता थी, और जो सुख हो रहा था वो किसका था, आत्ममणि का सुख था, और वहां पर ये दोनों, तो वहां पर हमारे जो अंतःकरण की वृत्ति सुसुप्ति अवस्था में होती है वो अज्ञान से आवृत होती है, लेकिन अज्ञान से आवृत होते हुए भी उसका आत्मा के साथ में तादात्म्य होता है, और आत्मा के साथ में तादात्म्य होने के कारण इंद्रियों से तादात्म्य हट जाने से, मन से तादात्म्य हट जाने से, वह क्या है, उस आत्मा के ही आनंद का अनुभव, जैसे वहां मणि के प्रकाश में वह खेलती, वैसे ही वह वृत्ति भी आत्मा के आनंद में, आत्मा के प्रकाश में, तो आत्मा के प्रकाश में क्या प्राप्त होगा, आत्मानंद ही प्राप्त होगा, आत्मानंद का वहां अनुभव करती है, ये है सुसुप्ति अवस्था, है ना। और भगवान फिर क्या करते, तो आगे कहते हो कि उस रीच को जगाते, और रीच को जगाते हैं तो भगवान से उसका क्या होता का युद्ध होता है ना, और युद्ध होता है तो बाहर के लोग भाग आते और सिला और रख देते। लेकिन जो है भगवान का युद्ध होता है, और युद्ध होते होते फिर क्या कहते हैं आगे, कहा फिर जामवान उनको पहचान लेता, और पहचान लेता है तो अपनी हार स्वीकार कर लेता है। पहले हार स्वीकार नहीं करता, अज्ञान भी पहले हार स्वीकार नहीं करता, तो हार स्वीकार कर लेता, और हार स्वीकार करके क्या करता, जिसको अपने अधीन कर रखा था, जिसे अपने अधीन कर रखा था, अब उसे क्या करता, कहा उन्हीं को समर्पित, मणि भी उन्हीं को दे देता है, और मणि पर भी अधिकार उन्हीं का, और वृत्ति को अर्थात उस कन्या को भी, और भगवान फिर उस मणि और कन्या को लेकर के पुनः आते हैं, हैं? और तब क्या करते उस सत्राजित को देते। लेकिन अब सत्राजित की समझ में आ गया तो सत्राजित क्या करता, उस मणि को भी दे देता है, और मणि को ही नहीं देता, अपनी कन्या सत्यभामा, ये कौन है, नाम भी शास्त्र बड़े शोध करके रखता है ना, तो अपनी वृत्ति को जो सत्य का ही प्रकाश करने वाली है, जो सत्य का ही अनुसरण करने वाली है, ऐसी जो वृत्ति है उस वृत्ति को किसको कर दी, दे दिया, का सत्य को ही दे दिया। आत्मा क्या है, सत्य, भगवान क्या है, सत्य है, उनको ही अर्पित कर दिया। पहले नहीं किया था, पहले तो उस वृत्ति पर भी अपना काबू था, मणि पर भी अपना काबू था, है, लेकिन जब दे दिया तो फिर क्या हुआ, तो सत्राजित भी सुखी हो गया और सारा संसार भी सुखी हो गया, है ना। तो अब यहां कहने का तात्पर्य क्या, भगवान भी गीता आदि शास्त्र में यही तो कहते हैं, मई एव मन आधत्स्व, मई बुद्धिम, मेरे में ही मन को लगा दे, मेरे में ही बुद्धि को लगा दे। लेकिन अभी बुद्धि और मन को हम कहां लगाए हैं, संसार में। हम समझते हैं कि ये जागृत अवस्था को लेकर के मैं हूं, इंद्रियों से संबंध लगा हुआ, इंद्रियों को लेकर के हम सामर्थ्यवान अपने को समझ रहे हैं, ज्ञानवान समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में प्रकाश जो है इंद्रियां करने में समर्थ, इंद्रियां भी उस आत्ममणि को लेकर के ही करने में समर्थ हैं, और बगैर उसके प्रकाश संभव नहीं। ऐसे उस आत्मा का ज्ञान कब होता है, जब इन तीनों अवस्थाओं का, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का प्रारूप क्या है, और यही वहां भागवत में बतलाया, उनको जब हम समझ लेते हैं तो फिर हमें जो, जिसे हम चतुर्थ कहते हैं, तुरीय कहते हैं, उस तुरीय का बोध होता है, और जैसे ही तुरीय अवस्था का बोध होता है तो वहां पूर्णता आ जाती है, और जहां पूर्णता आ जाती है तो क्या होता, फिर लोक व्यवहार में भी वो सुखी हो जाता, किसी को जीवन मुक्त भी कह देते हैं, और फिर जो प्रारब्ध आदि की जो कल्पना की गई उसके बाद जो है फिर उसको क्या कहते हैं, का विदेह मुक्त भी कह देते हैं। ये स्थिति होती, लेकिन ये स्थिति कब होती है, तो ये तभी होती है जैसे वह मन भी है, सिंह भी मर गया, इंद्रियां भी मर गई, अर्थात इनको हम परास्त करते चल जाए, इनके हम पराभूत न हो, और इनके पराभूत होकर के अंत में जो अज्ञान है उसके पराभूत भी न हो, उसको भी जो है हम कर दें, हरा दें, पराभूत कर दें, तब जाकर के क्या होता है, कहने लगे तब वो वृत्ति जो आत्मड़ी से वहां खेल रही थी, तब वह अज्ञान नहीं रहेगा, तब वह जागृत में भी उसका सुख ले सकेगा, जागृत में भी उसका सुख उसे मिलेगा। ये संकेत वहां पर किया गया, और ये प्रकाश आता है। ऐसे ही जितने भी हमारे अवतार हैं ना, वो कैसे हैं, वो इन अवस्थाओं को एक खेल समझते हैं, अवस्थाओं को धारण करने वाले और खेल समझते हैं, उनके साधनों को भी समझते हैं, लेकिन मूल वस्तु क्या है इस चीज को वो जानते हैं और खेल करते हैं। लेकिन जहां पर अज्ञान से पराभूत हो जाते हैं, इसलिए लोग गाते हैं ना, सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, बन गया देह में ही दिवा, खेल में खेलता दुख नित झेलता, ना अघाना है मृग तृष्णा के जल में नहाना, है सच्चिदानंद तू नित निर्द्वंद तू जी, है तो ये सच्चिदानंद प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, लेकिन इन्हीं अवस्थाओं को लेकर के इनमें जब वह इनका अतिक्रमण नहीं कर पाता है, इनसे परे जो चतुर्थ रूप है उस तक पहुंचता नहीं है, तब तक इन अवस्थाओं में लेकर के सुखी दुखी होता रहता। ये अवस्थाएं उसका क्या है, तो कहने लगे उसकी यात्रा की स्टेशने हैं, है? लेकिन हम उन्हें स्टेशन न समझ करके मंजिल ही समझ, क्यों? वहां अज्ञान कारण है, और जब तक ये अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है तब तक ये उपनिषदों का सिद्धांत सिद्ध नहीं होता, ये संकेत किया। और इसलिए जो अवतार की बात की, तो जहां पर अवतारों की बात, तो भगवान राम जो है जब सारे के सारे क्रियाकलापों से निवृत्त होकर के अयोध्या में आ गए, और अयोध्या में आ गए तो क्या वहां लिखा तुलसीदास, राम राज बैठे, भगवान राम राज पर बैठे तो क्या है, कहा हर्षित भये गए सब शोक, तीनों लोकों में क्या हुआ, प्रसन्नता हो गई, सारे शोकों की निवृत्ति हो। लेकिन कब हो गई, उन्हीं राम के विषय में क्या कहा, राम राज्य पर बैठे हुए भी क्या कहते हैं, सारी सभा को एकत्रित करते हुए क्या कहा, जो अनित कछु भाखों भाई तो मोय वरजो भय विसराई, यदि मैं नीत से हटकर के कोई भी कार्य करता हूं, यथा नियम से हटकर के कोई भी कार्य करता हूं, तो जो है मुझे बगैर भय के आप जो है रोक सकते, और आजकल यदि ऐसा कह दो, यदि आक्षेप भी कर दो तो पिट जाओ है, और जो है बंद कर दो तुम पर ही उल्टे आरोप और आ जाएंगे। तो ये जब होता तब जाकर के वहां राम राज्य होता, तब वहां सुख होता। इसलिए ही ये जो आज का पर्व है इसको भी थोड़ा संकेत कर, पर्व क्या है, तो इतिहास ये भी कहता भगवान जब जो है अयोध्या में आ गए, राज्य पर बैठ गए, तब लोगों ने दीपावली मनाई, ये भी संकेत। कुछ कवियों ने ऐसी भी कल्पना की कि जब हम पराधीन थे तो उस पराधीनता से निवृत्त होने के लिए छायावादी रूप से हैं कविता लिखी, ऐसा भी संकेत किया। तो इस प्रकार से ये सब चर्चा की, लेकिन इसी के साथ साथ सारा संसार ही क्या है, गुलाम है, पराधीन है, उस पराधीनता से निवृत्त होने के लिए भी वो चर्चा की, और उसके लिए क्या कहा, तो कुछ लोग तो भजन गाते हैं, हमको गाना तो भाई नहीं आता है लेकिन भजन याद है, भजन देखो सुना दें आप, लोग क्या गाते हैं, कहने लगे कहां जा रहा है ओ जाने वाले, अंधेरा है दिल में दिया तो जला ले, संकेत किया, और आगे कहने लगे ये जीवन सफर एक अंधा सफर है, और कहने लगे इतना ही नहीं क्या है, कहा बहकना है मुमकिन भटकने का डर है, संभलता नहीं दिल किसी के संभाले, कहां जा रहा है ओ जाने, अंधेरा है दिल में दिया तो अब वो अंधकार कहीं अन्यत्र नहीं है, वो कहां है, अब उसको तू जला लेगा तब तेरी यात्रा साफ होगी, नहीं तो भटक जाएगा है, बहक जाएगा, और संसार में यही तो हो रहा, क्योंकि ये जीवन का वहां भी संकेत किया, ये जीवन क्या है, एक यात्रा है, और इस यात्रा को करो, लेकिन कैसे करो, तो कहने लगे दीपक जला करके, अर्थात बुद्धि के अंतर्गत ज्ञान को धारण करके, बुद्धि हमारी प्रकाशमय हो, ज्ञानमय हो, और फिर जब हम इस यात्रा को करेंगे तभी जो है हमारी यात्रा। और एक और संकेत किया, जो ठोकर न खाए नहीं जीत उसकी, जो गिरकर संभल जाए है जीत उसकी, जब तक जीवन में ठोकर नहीं आती तब तक इस संसार से हटकर के सोचने की इच्छा होती ही नहीं, सोचता ही नहीं कोई, संसार में ही रचा पचा रहता। सत्रह जितने भी कब विचार किया कि अब दे दो, भगवान तो पहले ही कह रहे कि मन मेरे को दे दे, मणि मेरे को दे दे, लेकिन नहीं। भगवान भी गीता में कहते हैं मन मेरे को दे दे, बुद्धि मेरे को दे दे, लेकिन हम लोग दे पाते नहीं। हम भी भगवान को मानते तो अपनी बुद्धि के अनुसार मानते, अपनी कल्पना के अनुसार मानते, भगवान जैसा है उसमें बुद्धि को समर्पित कर देना, ये सब हमसे होता है, ये कब होता कहने ठोकर खा। तो जो ठोकर न खाए नहीं जीत उसकी, और कहने लगे ठोकर खाओगे तो गिरोगे, हैं? क्योंकि संसार का स्वभाव क्या है, फिसलना, और जहां फिसलन होगी तो वहां गिरना भी होगा। तो क्या कहा, कहने लगे जो गिरकर संभल जाए है जीत उसकी। अब गिर तो गए, लेकिन गिर करके पड़े पड़े रोते रहो तो बात नहीं, क्या करना है,